पृष्ठ संख्या 82। गजलें और लोकगीत। बेला में निराला द्वारा रचित लगभग 35-36 गजलें संग्रहित हैं। इनके बारे में भूमिका में निराला ने लिखा है कि बढ़कर नई बात यह है कि अलग अलग बहारों पृष्ठ संख्या 83 की गजलें भी हैं जिनमें फारसी के छंद शास्त्र का निर्वाह किया गया है। काव्य की कसौटी भी है। गजलें देखकर शुरू में मुझे अचंभा हुआ था, फिर मैंने जब काफ़ी ध्यान से उनकी गज़लें पढ़ी तो मुझे कुछ विशेष हाथ नहीं लगा। अचंभा इसलिए हुआ कि कविता को उनके अभिजात प्रसंगों से मुक्त कराने वाले निराला ने कविता की यह अभिजात पारंपरिक शिल्प विधा क्यों अपनाई, क्योंकि इसी संग्रह में जो गीत संग्रहित हैं उनमें गीतों की अपनी ही बनाई हुई भूमि को निराला ने तोड़ा है। उनकी भाषण संरचना और कथन की भंगिमा काफ़ी बदली हुई लगती है। दूसरे, यह उनकी काव्य रचना का वह दौर है जिसमें निराला अपनी अधिकांश शक्ति कविता के पारंपरिक रूप को ध्वस्त करके एक नए तरह के काव्य के निर्माण में संलग्न दिखाई देते हैं। कुकुरमुत्ता, पूरा संग्रह और अणिमा में संग्रहित काव्य अभिजात्य से मुक्ति के प्रयास में लिखी गई बहुत सी कविताओं का रचनाकाल यही है। फिर यह गजलों की रचना की ओर उनका ध्यान कैसे गया? इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई जीवनी पढ़ने के बाद मेरी इस शंका का समाधान हुआ। उनके अनुसार फिराक गोरखपुरी द्वारा तथा अंग्रेजीदा हिंदी लेखकों द्वारा हिंदी कविता और भाषा के खिल्ली उड़ाए जाने से संतप्त तथा उर्दू के आदर से प्रभावित होकर निराला ने उर्दू में लिखने का निश्चय किया। रामविलास जी के अनुसार इसमें शायद मन में यह भी भावना थी कि उर्दू में लिखने से ख्याति मिलती है और हिंदी गंवारों की भाषा मानी जाती है, लेकिन शायद मुख्य प्रेरणा फिराक द्वारा फेंकी गई चुनौती ही थी। इसके लिए निराला ने उर्दू शायरी का डटकर अध्ययन और गहन किया जिससे वह फारसी छंद शास्त्र पर महारत हासिल कर सकें। इसके अलावा वह कौन सी मनः स्थिति थी जिसके कारण उन्होंने गजल की शिल्प विधा अपनाई, इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचार यहाँ उद्धृत करना अनुचित न होगा। निराला थक गए थे, पुराने तेवर याद करके नई चुनौती स्वीकार कर ली थी, जिगर और फिराक से होड़ करने में काफ़ी समय और शक्ति नष्ट की। उनके मन में कोई ऐसा रीतापन था जिसे कोई चीज़ भर न सकती थी। मन में वहीतम स्वर चंचल हो उठे, भावना के प्रच्छन्नतम स्रोत प्रवाहित हों, रचना में संपूर्ण व्यक्तित्व ढल जाए, यह जैसे अब उनके लिए संभव न था। निराला की साहित्य साधना नरक यात्रा, पृष्ठ 397। रामविलास जी के इस कथन से लगता है कि निराला ने थकान में ही यह चुनौती स्वीकार कर ली थी, इसीलिए सुंदर गजलों की रचना में वह असफल हुए। यह सच हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनौती स्वीकार कर लेने के बाद भी गजल जैसी पारंपरिक विधा में उनकी रुचि जम नहीं पाई। उनके मन का प्रच्छन्नतम स्रोत तो कविता को उसकी अभिजात संस्कारों से मुक्त कराने में खुला हुआ था। पृष्ठ संख्या 84। अगर रामविलास जी की बात को प्रमाण मान लिया जाए, मानना ही चाहिए, तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि काव्य अभिजात से मुक्ति की नए पत्ते की उनकी अधिकांश कविताएं उनकी गंभीर काव्य रचना का परिणाम न होकर हल्के मूड या संश्लिष्टता और बिंबात्मकता के कठिन श्रम के बाद रिलैक्सेशन के मूड में लिखी गई कविताएं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा यह पक्का विचार है कि कुकुरमुत्ता, अणिमा की नई तर्ज की कविताएं, बेला और नए पत्ते की कविताएं उनके गीत या लंबी कविताओं से कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहरहाल रामविलास जी का यह कथन तो सच है कि जिगर और फिराक से होड़ करने में उन्होंने काफ़ी समय और शक्ति नष्ट की। मेरी धारणा की पुष्ट इससे भी होती है कि गजलों की पारंपरिक विधा अपनाने के बावजूद निराला ने गजल की संवेदना का अपनी गजलों में लगभग परित्याग कर दिया है। उनमें भी वह हास्य व्यंग्य और जन समर्पित अनुभवों को ही समाहित करने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कोई भी गजल संवेदना के लिहाज से पारंपरिक गजल नहीं है, बल्कि उनकी संवेदना काव्य अभिजात से मुक्ति के प्रयत्न में लिखी गई कविताओं के अधिक निकट मालूम पड़ती है। यह एक प्रकार से गजल का फॉर्म अपनाते हुए भी उसमें एक नया प्रयोग है, क्योंकि अधिकांश गजलें गजल की विषयगत परिपाटी से अलग हैं। उनमें इश्क और विरह की चर्चा कहीं भी नहीं है। किसी विचार सूत्र को भी अत्यंत गूढ़ ढंग से गालिब और इकबाल की तरह गूंथने का प्रयत्न वहां नहीं दिखाई देता। कहीं कहीं चुनौती में आकर जब भी निराला ने नाजुक ख्याली दिखलाने की कोशिश की है, वह अधिकांशतः असफल ही रहे हैं। लेकिन जहां वह हास्य व्यंग्य और उपेक्षित जनसाधारण की भावनाओं को अपनी गजलों में जगह देते हैं, वहां हमारा ध्यान उनकी ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है, क्योंकि यहां संवेदना के स्तर पर उनकी रचनात्मक क्रियाशीलता, जो गजलों से इतर ढंग की कविताओं में व्यक्त हुई है, एक दान हो जाती है। इसीलिए ऊपर मैंने कहा कि काव्य अभिजात्य से मुक्ति के प्रयास में लिखी गई कविताएं उनकी गंभीर रचनात्मकता का परिणाम है, और उनको लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि रचना में अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को ढाल लेना अब निराला के लिए संभव नहीं था। लेकिन संवेदनागत एकतनता के बावजूद विधा की पारंपरिकता के कारण गजलों के उनके प्रयोग सफल नहीं हुए हैं। व्यंग्य हास्य और जन संपर्क की अनुभूतियों को व्यक्त करने के अनुकूल गजल का स्वभाव नहीं है। इसीलिए गजल का यह स्वभाव निराला की प्रयोगशीलता में आड़े आता है। कोई भी पूरी एक गजल ऐसी नहीं है जिसमें संवेदना, प्रयोग और विधागत सामंजस्य निराला स्थापित कर सके हों। यही बात भाषा बंध की रचना को लेकर भी कही जा सकती है। अपनी गजलों की भाषा में पृष्ठ संख्या 85, निराला वह गढ़न और संवार नहीं ला सके हैं जिससे गजल का हर शेष अर्थ चमत्कार से सहसा उद्भासित हो उठे। भाषिक संरचना के स्तर पर निराला ने संस्कृत के तत्सम और उर्दू शब्दों का एक अजीब सा घालमेल किया है, जो जगह जगह हास्योत्पादक हो उठा है। कारण वही विधागत पारंपरिकता में नई संवेदना को ठूसने का प्रयास है। इसके अलावा शायद निराला गजल के लिए संस्कृत तत्सम शब्दों तथा उर्दू फारसी के शब्दों को मिलाकर किसी नए भाषा बंध का ईजाद करना भी चाहते हैं, लेकिन इस प्रयत्न में भाषा की एक अजीब सी बेस्वाद खिचड़ी तैयार होकर रह गई है। संभवतः निराला को भी अपनी गजल रचना की गहरी असफलता का एहसास है। एक जगह अपनी एक गजल में वह खुद का मजाक बनाने से नहीं चूकते। मैंने कला की पाटी ली है शेर के लिए, दुनिया के गोलंदाजों को देखा दहल गया। उनकी गजलों की कमजोर भाषिक संरचना के उदाहरण स्वरूप यहाँ कुछ शेर उद्धृत करना मुनासिब होगा। एक, नवीनता की आंखें चार जो हुई उनसे, कहा कि प्यार के होते हैं ये बहार के दिन। दो, कदम के उठते कहा प्रियतमा ने फूलों से, उरों में तीरों के हूले हैं ये बहार के दिन। तीन, वहीं नबीना सजी और वहीं बजी बीड़ा, शराबो प्याले का अब तक न बहिष्कार हुआ। पहले शेर में नवीनता शब्द का प्रयोग बहुत ही भोड़े ढंग से किया गया है। इसी तरह कदम के साथ प्रियतमा और उरों में तीरों के हूले न कोई नया मुहावरा गढ़ते हैं, न शब्दों के मिश्रित प्रयोग से कोई नई अभिव्यक्ति निकालते हैं। तीसरे शेर की पहली पंक्ति तो बिल्कुल तत्सम शब्दों के प्रयोग से निर्मित की गई है। बीड़ा और नवीना के साथ शराबो प्याले का जिक्र दो अलग अलग संस्कारों के शब्द बंधों को एक थाली में परोस देने जैसा लगता है, जैसे एक ओर पंचामृत और दूसरी ओर भुना हुआ मुर्गा रखा हो। फिर शराबो प्याले के बहिष्कार की बात भी खटकती है। इस तरह के भोड़े और अर्थहीन प्रयोगों से निराला की गजलें भरी पड़ी हैं। भाषा की जिस सफाई और सौंदर्य के लिए निराला की तारीफ की जाती है, वह यहाँ कहीं नहीं मिलती, और दरअसल वह पूरी तरह अपनी इन गजलों में असफल हो गए हैं। पृष्ठ संख्या 86, इसकी वजह वही है, बावजूद चुनौती मानकर गजल को अपनाने के, यह विधा उनके स्वभाव और संस्कारों के प्रतिकूल पड़ती है। उनका प्रेम भी इश्क नहीं है। निराला चाहे जितना अच्छा गोश्त क्यों न पकाते रहे हों, चाहे वह भरे मंच पर शराब की बोतल क्यों न खोल लें, चाहे वह कैसी भी ठेठ गालियां क्यों न दे लें, वह बुनियादी तौर पर वैष्णव संस्कारों के कवि हैं। उनके काव्य में फूट फूट कर बहने वाली करुणा, पावनता और आत्मसमर्पण उनके इन्हीं वैष्णव संस्कारों की देन है। इसीलिए उनका प्रेम चित्रण और गजल का नफीस चमत्कारिक इश्क वर्णन दोनों दो भिन्न दिशाओं की वस्तुएं हैं। इसीलिए प्रेम की गहरी उछलता और पावनता के कवि होते हुए भी उन्होंने गजल के फार्म में अपनी प्रेम भावना को बैठलाने और चित्रित करने की कोशिश नहीं की है। जहाँ की है वहाँ वह नितांत असफल रहे हैं। यह जहाँ इश्किया गज़लें लिखने की कोशिश की है, वह उर्दू शायरी की परंपरा का पृष्ठ पोषण सा करते दिखाई देते हैं। मीर, सौदा, गालिब, इकबाल, जिगर या फिराक की तरह वह भी इन सब के समकक्ष अपनी कथन भंगिमा का कोई नया चमत्कार नहीं रख सके हैं, जिससे इश्क के संबंध में उनका भी कोई शेर उसी तरह जवान पर चढ़ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि निराला की गज़लों का अगर कोई महत्व है तो यही कि वह बेला की दूसरी कविताओं से संवेदना के स्तर पर बहुत अलग नहीं है। उनके उपयोग का महत्व वही है जहाँ उनके विषयगत परंपरा को तोड़कर निराला ने उन्हें अपने प्रतिकूल बनाने की कोशिश की है, जहाँ उनमें व्यंग्य हास्य प्रयोग और जनसाधारण को प्रतिष्ठित करने के उनके काव्य प्रयत्न की अभिव्यक्ति मिली है। इस तरह के प्रयोग कहीं कहीं बहुत ही काव्यात्मक और प्रभावशाली बन पड़े हैं। एक बांधी थी मूठ मैंने संचय की चिंतना से, मुद्रा दरिद्र की है तुमने किया इशारा। दो समाज ने सर उठाया है, राज बदला है, सलास वे पतझर से बहार लाएंगी। तीन खुला भेद विजयी कहाए हुए जो लहू दूसरे का पिए जा रहे हैं। चार जिन्होंने ठोकरें खाई गरीबी में पड़े उनके हजारों, हाँ हजारों हाथ के उठते समर देखे। पृष्ठ संख्या 87। पाँच भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है। निराला को सुर और लय बहुत गहराई से आकर्षित करते रहे हैं। उनका संगीत उनके हृदय में बजता हुआ बाहर आता हुआ मालूम पड़ता है। उनके गीतों को पढ़ते हुए बराबर यह लगता है कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व सुर से सधा हुआ है। वे शब्द को केवल अर्थ की पृष्ठभूमि में ही अपनी कविताओं में प्रयुक्त नहीं करते, बल्कि उनकी निगाह अर्थ से अधिक उसमें निहित सूक्ष्म लयात्मकता, ध्वनि संयोग तथा रंगमयता पर जाती है। इसीलिए निराला की कविताओं में प्रयुक्त शब्दों में उनका अर्थ उतना प्रमुख नहीं होता जितना उसकी बजती हुई स्वर लहरियों और रंग वैविध्य। इसीलिए अक्सर शब्दों के स्वर और रंग उन्हें अधिक आकर्षित करते हैं। स्वरों और रंगों के इसी संयोग ने कभी-कभी लोकगीतों की ट्रयोन की ओर आकर्षित किया है। रंगमयता की दृष्टि से वसंत ऋतु उन्हें बहुत प्रिय है। ऋतु चित्रण इसी संदर्भ में उन्होंने कुछ फागुन या होली के गीतों की रचना की है। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, यही दो तीन, लेकिन उनका काव्यत्व दर्शनीय है। लोकगीतों की ओर उनका झुकाव शायद अभिव्यक्ति की निश्चलता और उसमें प्रयुक्त शब्दों के भोले व्यवहार के कारण हुआ लगता है। उनके द्वारा रचे हुए फाग बड़े ही मधुर स्वर में गाए जा सकते हैं, खासकर उनमें गेयता का उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। शब्दों के प्रयोग और छंद रचाओं में परंपरागत फागों की ट्रयोन निराला ने पकड़ी है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त एक बात यह भी ध्यान देने लायक है कि उनके दूसरे प्रेम गीतों की तरह इन फागों में भी उनकी आह्लाद से आत्ममुक्ति तक की वही सुखद आत्मतोष भरी यात्रा अंतर्गुम्फित है। इस दृष्टि से निराला द्वारा रचित ये फाग उनके प्रेम गीतों की ही कोटि में आते हैं। नयनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली, जागी रात सेज पिया पति संग, रति स्नेह रंग घोली, दीपित दीप प्रकाश कंज छवि, मंज मंज हस खोली, मलि मुख चुंबन रोली। प्रियकर कठिन उरोज परस कस, कसक मसक गई चोली, एक वसन रह गई मंद हस, अधर दशन अनबोली, कली सी कांटे की तोली। पृष्ठ संख्या 88। मधुर ऋतु रात मधुर अधरों की पी मधु सुध बुध खोली, खुले अलक मुंद गए पलक दल, श्रम सुख की हद होली, बनी रति की छवि भोली। बीती रात सुखद बातों में प्रात पवन प्रिय डोली, उठी संभाल बाल मुख लटपट दीप बुझा हंस बोली, रही यह एक ठठोली।